This is an ABP Life podcast.
असम, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, इनफैक्ट मैदान के वो इलाके जहां कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि बाढ़ आएगी, हर जगह बाढ़ ही बाढ़ नजर आ रही है, वो भी जुलाई के ही मंथ में जहां सिर्फ मानसून की शुरुआत हुई है। मानसून जिसे उत्सव के तौर पर देखते हैं, ये कैसे कहर ढा रहा है, डरावना हो गया है। आइए इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर आज के FII में, जहां हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं।
मेरा नाम गुंजन मिश्रा है, मैं पर्यावरण विज्ञान का छात्र हूं।
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मानसून का ये रौद्र रूप क्यों देख रहे हैं? आपसे आंकड़े जरूर से जानना चाहूंगी, थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर आप हमें लेकर के जाएं, पहले का मानसून अब का मानसून कितना बदल गया है, आखिर अब हर बार जब भी मानसून आता है अपने साथ बाढ़ ही बाढ़ क्यों लेकर के आता है, क्या बाढ़ का आना बढ़ गया है हमारे भारत में, आंकड़े क्या कहते हैं, इससे शुरुआत करें।
देखिए मैम, मैं बात करता हूँ, शुरुआत करता हूँ मैं 70 के दशक से। बात 70 के दशक में की जाए तो उस समय जो बाढ़ हुआ करती थी, जब पहली बार होती थी मानसून की, तो वो एक उत्सव की तरह होती थी हम लोगों के लिए। उत्सव की तरह इन द सेंस की बच्चे बूढ़े सभी लोग आनंदित होते थे जब पहली बारिश होती थी। आज से लगभग 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और अगर नदी में थोड़ा बहुत पानी बढ़ता भी था तो जो बाहर घर के दरवाजे पर जो जानवरों के लिए खूंटा बनाया जाता था या खूंटा रखा जाता था उनको बांधने के लिए, तो ये माना जाता था और ये संभावना बनी रहती थी कि जो नदी की बाढ़ है वो खूंटे को देख कर वापस लौट जाएगी। और ऐसा ऐसा होता भी था कि जो नदी की बाढ़ होती थी वो जहाँ जानवरों का खूंटा होता था उसको देखकर वो लौट जाया करती थी। अगर फिर भी उसके बावजूद भी अगर उसका पानी बढ़ता था, नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ता था और अगर घर के दरवाजे तक आ जाता था तो उसका बाकायदा स्वागत किया जाता था। हमारे घर की जो महिलाएं थी वो बाकायदा उसका स्वागत करती थी या उससे प्रार्थना करती थी कि बस मिल्या आप रहने दो, अब इससे ज्यादा मत चलना। और वो उसके लिए बाकायदा फूल, चावल, अच्छा वगैरह उसको उस पानी में समर्पित करती थी और प्रार्थना करती थी मैया कि बस अब बहुत हो गया, हमारे लिए पर्याप्त हो गया पानी, अब आप लौट जाइए। तो इस तरह से घर के कुछ लोग जो हमारे भारत की जो परंपराएं थी वो इस तरह से शामिल थी उसमें। और ये भी शामिल था कि लगभग 100 वर्ष में आदमी कभी प्रलय, मतलब प्रलय का मतलब कि मकानों के छत के ऊपर तक पानी आ जाना, ऐसी स्थिति वो 100 वर्षों में शायद 1 या 2 दफे देख पाता था, ऐसा होता था। लेकिन अब जो हो रहा है वो सही मायने में देखा जाए तो वैज्ञानिकों के भी समस्या पूरी हो रहा है कि जहाँ पर सूखा था वहां पे बाढ़ आने लगी, जहाँ पे बाढ़ होती थी वहां पे सूखा होने लगा, जहाँ पे बर्फ गिरती थी वहां पानी गिरने लगा, जहाँ बर्फ नहीं गिरती थी वहां बर्फ गिरने लगी। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है या जलवायु का जो शांतिकरण हो रहा है, इसकी वजह से ये कई कारण हो जाते हैं कि नदियों में बाढ़ आ जाना। भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो बाढ़ से जो सबसे अधिक प्रभावित और संभावित जो हमारे क्षेत्र कहे जाते हैं या जो नदियों के बेसिन माने जाते हैं, उसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र तो है ही है सबसे ज्यादा प्रभावित। लेकिन बाढ़ की संभावना के हिसाब से अगर देखा जाए तो 59% नर्मदा बेसिन में, 60% महानदी बेसिन में, 42% गोदावरी में, 38% कृष्णा में, गंगा में 21% और ब्रह्मपुत्र में 18% जो संभावना होती थी वो बाढ़ की इस तरह से होती थी। लेकिन अब ये पैटर्न जो है अब ये चेंज होने लगा है। अब वो चेंज क्यों होने लगा है, इसका सीधा सीधा कारण समझ में आ रहा है कि हमारा जो जलवायु का स्थानांतरण हो रहा है इसकी वजह से। पर यही कारण है कि आसाम हो, केरल हो, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, आदि इन राज्यों, ये जो राज्य हैं ये सब बाढ़ से प्रभावित होने वाले राज्य हैं। इसीलिए भारत देश को बाढ़ के कारण बहुत ज्यादा वल्नरेबल माना गया है, क्योंकि भारत का कुल अगर भौगोलिक क्षेत्र हम देखें तो 329 मिलियन हेक्टेयर है और जिसमें से 40 मिलियन हेक्टेयर जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। इसीलिए भारत को प्राकृतिक जो आपदाएं हैं आपदाओं वाला देश माना जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 68% जो भूमि है वो सूखे से प्रभावित है, 60% भूमि जो है वो भूकंप से प्रभावित है, और बाढ़ से जो भूमि हमारी प्रभावित है वो सिर्फ 12.5% है।
अच्छा,
तो हाँ, भारत में सिर्फ बाढ़ से जो प्रभावित भूमि है वो 12.5% है, बाकी तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो सूखे के कारण प्रभावित है। और यही कारण है, यही इन सब चीजों को आप लोग देखते हुए भारत में लगभग 4 प्रकार की बाढ़ होती है। एक तो नदी की बाढ़ जो मैंने आपको भी डिस्कस किया कि नदी से जो बाढ़ आती है वो बाढ़ हो गई, दूसरा समुद्र की चट्टी बाढ़, तीसरा सीवर वाली बाढ़। सीवर वाली बाढ़ खासतौर से आपके शहरों में होती है, सीवर वगैरह चौक हो जाना, ड्रेन चौक हो जाना, उनसे पानी जब निकल नहीं पाता तो बाढ़ आ जाती है शहरों में। और चौथा जो होती है वो होती बांधों के कारण अचानक आने वाले पानी के कारण बाढ़। बांधों से जब अचानक पानी छोड़ दिया जाता है तो जो उसके कारण जो बाढ़ आती है वो अचानक आने वाली पानी की बाढ़ होती है।
तो क्या मैदानी इलाकों में, क्या मैदानी इलाकों में इस वक्त बांध से आने वाली बाढ़ है?
बिल्कुल है, बांध देखिए, बाढ़ का मेन जो रीजन है वो बांध तो है ही है। उसकी वजह यही है क्योंकि एक लालच होता है, लालच ये होता है कि हमारा बांध अगर पूरा भर जाएगा तो हमको गर्मियों में आने वाले समय में हमको दिक्कत नहीं होगी, या हम आम आदमी को पानी दे पाएंगे सिंचाई के लिए, पीने के लिए। तो बांध को पूरी तरह से पूरा भर लिया जाता है, उसके बाद ही उससे पानी छोड़ा जाता है, निकाला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कैचमेंट एरिया में जो वाटर मॉडलिंग वगैरह सिस्टम की ना समझ होने के कारण कभी कभी ज्यादा पानी आ जाता है, तो जब बांध के गेट को फिर अचानक खोलना पड़ जाता है, और जब बांध के गेट को अचानक खोलना पड़ जाता है तो स्वाभाविक जाते नीचे डाउन स्ट्रीम की तरफ हमको बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जो लोग रहते हैं उनको बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो ये सब रीजन है। और जहां तक आसाम की बात है या नॉर्थ ईस्ट की बात है, खासतौर से आसाम की जो लगातार बाढ़ आ रही है, उनके कारण अगर उनके कारणों पर ध्यान दिया जाए तो उसमें सबसे पहला कारण तो यही है कि आसाम में लगभग 120 नदियां बहती हैं मैम, है ना, और जिनका उद्गम जो है वो अरुणाचल से है, मेघालय से है, कुछ चाइना से है, हैं, और ये सब जो नदियां निकलती हैं जंगल पहाड़ से निकलती हैं, और ये सब नदियां जो 120 नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र में कहीं ना कहीं आकर मिलती हैं, और जिससे ये क्या होता है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है विश्व की उन नदियों में शामिल हो जाती है जिसमें सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। तो ये तो रीजन असम में बाढ़ आने का एक तो कारण ये है कि वहाँ पे 120 नदियों का होना, दूसरा बहुत ज्यादा गाद का आना मतलब चूंकि जंगल वगैरह कट चुके हैं, जंगलों में उतनी हरियाली और वो सब चीजें नहीं बची हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा गाद का आना, सेडिमेंटेशन का आना, है ना, तो उसके कारण भी बाढ़ बढ़ जाती है। और फिर वर्षा का जो अनिश्चित पैटर्न है उसके कारण भी बाढ़ का जो पैटर्न हो जाता है वो भी अनिश्चित हो जाता है कि कब आएगी, किस समय आएगी और किस समय नहीं आएगी, ये भी हो जाता है। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है असम में बाढ़ आने का वो ये है कि असम घाटी एक यू के आकार की घाटी है, यू शेप की, यू के आकार की घाटी है जिसमें पानी का बहाव कम हो जाता है, या पानी का निकलना मतलब बहुत धीरे धीरे निकलना हो पाता, संभव हो पाता है, तो इसलिए भी वहां पर बाढ़ आ जाती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भूस्खलन है, चट्टी कटाव है, बांध है, अतिक्रमण है, और ब्रह्मपुत्र में तो कुछ ब्रह्मपुत्र नदी में तो कुछ ऐसे द्वीप में है जहाँ पे बाकायदा आवासीय द्वीप है वो, तो वहां पे तो स्वाभाविक सी बात है वहां पे भी बाढ़ आ जाती है अधिक। और इसका और इसके अलावा और भी कई कारण है, जैसे जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अधिक बारिश वाले क्षेत्रों से गुजरती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेघालय से जो पानी आता है वो ब्रह्मपुत्र में आता है, तो मेघालय भी बहुत अधिक बारिश वाला क्षेत्र माना जाता है। तो ये सब कारण हैं असम में बाढ़ आने के कारण। और अगर हम भारतवर्ष को देखें, भारतवर्ष में देखा जाए तो अगर जो हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन है वो लगभग 332 स्टेशनों से बाढ़ की भविष्यवाणी करता है।
ओके।
और साल में लगभग बाढ़ से संबंधित जो है वो 10,000 सूचना या भविष्यवाणी प्रदान करता है जो सेकंड वाटर कमीशन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बाढ़ पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसका मेन कारण यही है कि नदियां अपने साथ सेडिमेंट लेकर चलती हैं, हैं? दूसरा सेडिमेंट जब लेकर चलती है तो ड्रेनेज का ब्लॉक हो जाता है, नदियों के किनारे का चरण होना, इरोजन होना, क्लाउड बस्टिंग होना, साइक्लोन वगैरह, वेस्टर्न जो क्लाइमेट है उसका डिस्टर्बेंस होना, और डैम नदियों के ऊपर डैम बनना, रेत का खनन नदियों में, जंगल का कटान, कूड़ा करकट गार्बेज फेंकना नदियों में, अर्बनाइजेशन शहरीकरण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, और सबसे मुख्य कारण ये है कि पारंपरिक ज्ञान का अभाव। जैसे कि आज के हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं हम यही नहीं जानते कि रोहिणी नक्षत्र में क्या होता है, चित्रा नक्षत्र होता है, स्वाति नक्षत्र कब होता है, इनमें कितनी बारिश होती है, कब होती है, ये सब चीजें हैं। और इसके अलावा जो पोलर रीजन है पृथ्वी के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनका गर्म होना, गर्म होने का मतलब बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलने का मतलब बाढ़ आना, तो ये सब भारत में बाढ़ आने के कारण हो जाते हैं। अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? कंट्रोल करने के लिए तो स्वाभाविक सी बात है हमको सबसे पहले तो यही चाहिए कि जो बाढ़ आती है वो खासतौर से हमारे पड़ोसी देशों से जो जल संबंधी जो या जो जल उपयोग संबंधी आंकड़े हैं वो साधा ना होना, उनके बारे में हमको मालूम ही नहीं कि नेपाल से कितना पानी आ रहा, चाइना से कितना पानी आ रहा, तिब्बत से कितना आ रहा, तो ये सब होना। दूसरा जंगल का कटान हो जाना जिससे कि जो एक्सेस वाटर है वो रिटेन नहीं हो पाता जंगलों में, और तीसरा जो है वो टेम्परेरी जो फ्लड बैरियर्स है उनका ना होना। टेम्परेरी फ्लड बैरियर्स में जैसे तालाब वगैरह बाढ़ के प्रबंधन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ये टेम्परेरी फ्लड बैरियर्स के रूप में काम कर जाते हैं, तो तालाबों वगैरह का ना होना, और जो तालाब वगैरह थे भी तो उनके अतिक्रमण का हो जाना। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड वेज है, बाढ़ के लिए रास्ता ना मिलना, बाढ़ का रास्ता ना होना, और उसके साथ साथ वार्निंग सिस्टम ना होना, फ्लड वाला तो फ्लड का वार्निंग सिस्टम ना होना, आपका जो वाटर जो सेंसर है उनका ना होना। चौथा ये हो जाता है जो कैचमेंट फ्लड मॉडल है वो किसी भी रिवर बेसिन के लिए हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो ये सब कारण है और ये सब कंट्रोल करने के रीजन है जिनसे हम बाढ़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं, और ये सब कारण है जिनसे हमारे ऊपर हम भारतवर्ष में बाढ़ आती है। अब इसको कम कैसे किया जाएगा? कम करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमको चाहिए कि हम जो हमारे पास परंपरिक तरीके से सबसे पहले तो उन पर ध्यान देना चाहिए, फिर वैज्ञानिक तरीकों पर आना चाहिए, फिर उसके साथ साथ हमको नदी बेसिन के स्टडी पर आना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जब हम इस तरह से बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और वैसे भी ये कहा गया है हमारे पुराण में ये कहा गया है कि हमको इस बारे में जानकारी होना चाहिए कि प्रकृति क्या है, और प्रकृति जो है वो सही मायने में ईश्वर की एक कृति है, तो हमको उसको पूरी तरह से समझना चाहिए तभी हम बाढ़ और सुखाड़ और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे निजात पा सकेंगे।
आखिर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े और आपने हमें गहराई से बताया कि प्रकृति को हमें आखिर समझने की अब जरूरत है। मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।